नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।